नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु के बीच अबुजा में वार्ता। प्रदेश में खोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद केंद्र। संयोजनम 2024 के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा। राज्य में दो अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु, 14 लोग हुए घायल। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट से गुलाबी ठंड का एहसास। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु ने आज अबुजा में वार्ता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा की और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के अवसरों पर चर्चा की। राष्ट्रपति तिनुबु के साथ शिष्टमंडल स्तर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी कार्यनीति भागीदारी को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में पहले से सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और समुद्री लुटेरों की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीर से सम्मानित करने के निर्णय के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि समस्त भारतीयों का है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि भारत नाइजीरिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत के लिए मानवीय सहायता के तौर पर 20 टन सामग्री भेजेगा। श्री मोदी ने नाइजीरिया को ब्रिक्स का भागीदार देश बनाने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नाइजीरिया ग्लोबल साउथ के मुद्दों को विश्व मंच पर उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नाइजीरिया में भारतवासियों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की 2 दिन की यात्रा पर कल रात अबुजा पहुंचे। नाइजीरिया में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को सम्मान स्वरूप अबुजा शहर की चाबी भेंट की गई। प्रधानमंत्री मोदी आज नाइजीरिया से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो रवाना होंगे। वहां 2 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर बैठक में भाग लेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल ओडिशा तट पर डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग को बधाई दी है। इस बीच एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 19 नवंबर को अमेरिका के केप कैनावेरल से भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 इसरो का GSAT-20 लॉन्च करेगा। 4700 किलोमीटर का GSAT-20 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रहों में से एक है। ये देश में विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे एक विचारक थे जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई और मराठी लोगों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का निडर अंदाज और अटूट समर्पण भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित संयोजनम 2024 का आज समापन हो गया। संयोजनम 2024 के तीसरे दिन आयुर्वेद चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थियों ने चरक संहिता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। इस आयोजन में देशभर के 3,000 से अधिक आयुर्वेद से जुड़े शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी शामिल हुए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसे खोलने को लेकर तैयारी की जा रही है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समारोह में आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के आयुर्वेद विद्वानों, चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हो गए। शांचूर जिले के पलादर गांव में अनियंत्रित ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 1 व्यक्ति घायल हुआ, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। तीनों मृतक गुजरात निवासी थे। वहीं बूंदी जिले के देहीखेड़ा घाट का बराना के पास शनिवार देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई और 14 लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा रेफर किया गया है। ये सभी श्रद्धालु चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के दर्शन करने जा रहे थे। टमाटर की कीमत बेहद आपूर्ति के कारण 1 महीने में 22% से ज्यादा कम हो गई है। टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 14 नवंबर को 52.35 रूपये प्रति किलोग्राम था, जो कि 14 अक्टूबर को 67.50 रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से 22.4% कम है। इसी अवधि में दिल्ली की आजादपुर मंडी में मॉडल कीमत 5,883 रूपये प्रति क्विंटल से गिरकर 2,969 रूपये प्रति क्विंटल हो गई। इस दौरान विभिन्न शहरों की मंडियों में भी टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए देश भर में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश में मनाया जाने वाला यह उत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत और आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करता है। यह पखवाड़ा भावी पीढ़ियों को उनके बलिदानों को स्वीकार करने और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रदेश में भी जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांचौर जिले के रानीवाड़ा में आदिवासी समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस आयोजन में समाज को मजबूत और सशक्त करने पर मंथन हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भील और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी के असर से राज्य के कई शहरों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। हनुमानगढ़, सीकर के फतेहपुर, जैसलमेर सहित कई स्थानों पर कोहरे का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में आज दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले भर में लगातार ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है और सुबह से लेकर देर रात तक यही स्थिति बनी हुई है। लोगों को सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। ठंड बढ़ने के कारण लोगों की जीवन शैली भी बदली है। अब दिन भर लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। लगातार कोहरे के बीच आज लोगों को थोड़ी राहत मिली और सूर्य देवता के दर्शन हुए, परंतु इस दौरान चली हवा के कारण ठंड का एहसास भी लगातार बना रहा। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
मौसम जयपुर केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में आज 64वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 1,75,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई पंगत प्रसादी का दौर देर रात तक जारी रहेगा। आयोजन से पहले 61 मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया गया। हर साल आयोजित होने वाले इस अन्नकूट महोत्सव में सभी जाति समाज के लोग एक साथ पंगत प्रसादी ग्रहण करते हैं। पाली में आज ग्रीन हार्टफुलनेस रन के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। दौड़ के समापन पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के महत्व के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। जयपुर कल अपना 297वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस सिलसिले में शहर भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। समारोह की कड़ी में आज विभिन्न संगठनों की ओर से जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन सुझाव दिए जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी एक दिवसीय दौरे पर आज अलवर पहुंचे। अलवर पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय अंबेडकर नगर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। बैठक में भाजपा सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक इस अभियान को हम लक्ष्य को हासिल करेंगे। भरतपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से ई कंटेंट निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्राचार्य नीलमणि चौधरी ने विभिन्न विषयों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए नवीनतम डिजिटल टूल्स के उपयोग करने के बारे में बताया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया गया कि डिजिटल शिक्षा प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई कंटेंट न केवल छात्रों को शिक्षा का नवीन अनुभव प्रदान करता है बल्कि उनके समझने की कौशल में भी बढ़ता है। इस दौरान शिक्षकों ने डिजिटल युग में नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के बीच अबुजा में वार्ता हुई। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद केंद्र खोला जाएगा। संयोजन 2024 के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस संबंध में घोषणा की। राज्य में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 14 लोग घायल हुए हैं। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट से गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।